नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। संसद का 26 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से। सरकार संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर नई दिल्ली के भारत मंडपम में वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत इटली को यूरोप में अपना प्रमुख साझेदार, महत्वपूर्ण सहयोगी और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अत्यंत प्रभावशाली देश के रूप में देखता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा, यूपीआई का अंतर्राष्ट्रीयकरण तेजी से आगे बढ़ रहा है। और सऊदी अरब के जिद्दा में आईपीएल नीलामी के पहले दिन कल ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने रिकॉर्ड बोलियां हासिल की। समाचार प्रभात के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। 26 दिनों तक चलने वाले सत्र में 19 बैठकें होंगी। हालांकि कल 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर संसद की बैठक नहीं होगी। संविधान दिवस पर मुख्य कार्यक्रम संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में होगा, जहां 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था।
संसद का शीतकालीन सत्र अगले महीने की 20 तारीख तक चलेगा। विधायी कार्यों में कुल 16 विधेयक सूचीबद्ध हैं, जिन्हें इस सत्र के दौरान पारित किए जाने की संभावना है। इन विधेयकों में भारतीय वायुयान विधेयक 2024, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक, रेलवे संशोधन विधेयक, वक्फ संशोधन विधेयक और भारतीय बंदरगाह विधेयक 2024 शामिल है। इसके अतिरिक्त सत्र के दौरान वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर भी चर्चा और मतदान होगा। आनंद कुमार के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इससे पहले संसद के दोनों सदनों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के संबंध में विचार विमर्श के लिए नई दिल्ली में कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से लोकसभा और राज्यसभा के सुचारू रूप से संचालन में सहयोग करने की अपील की।
हम सिर्फ अनुरोध यही करते हैं कि सदन अच्छा से चले, हंगामा ना हो। कोई भी विषय पार्लियामेंट में रहता है तो शांति पूर्वक उस विषय को चर्चा होगा तो बहुत लाभ मिलेगा। हर सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहता है, लेकिन सदन अच्छी तरह से चलना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपील किया है कि ये शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, अच्छी तरह से चले। इसमें सबका सहयोग चाहिए और सबका भागीदारी जरूरी है।
श्री रिजिजू ने कहा कि 30 राजनीतिक दलों के 42 नेताओं ने बैठक में भाग लिया और हर दल के नेता ने अपने सुझाव दिए। उन्होंने बताया कि नेताओं के सुझावों पर कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा की जाएगी कि लोकसभा और राज्यसभा में कौन से मुद्दे उठाए जाएं। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार दोनों सदनों में उचित और शांतिपूर्ण चर्चा चाहती है।
पार्टी लीडर्स का मीटिंग हुई, पूरे मिलाकर के 42 पॉलिटिकल लीडर्स, 30 पॉलिटिकल पार्टीज के नेता और पार्टी के फ्लोर लीडर का पार्टिसिपेशन हुई। हर पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया और कुछ मांग रखे हैं और बारी बारी से हमने सारा पॉइंट नोट भी किया है।
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि पार्टी ने उद्योगपति द्वारा कथित रिश्वत घोटाले, मणिपुर की स्थिति, बेरोजगारी और उत्तर भारत में प्रदूषण सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन आईसीए के वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के 130 वर्षों के इतिहास में पहली बार वैश्विक सहकारिता सम्मेलन और आम सभा का आयोजन भारत में किया जा रहा है। इस अवसर पर श्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। इस सम्मेलन में भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोबगे और फिजी के उप प्रधानमंत्री मनोआ कामिकामिका भी शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत इटली को यूरोप में प्रमुख साझेदार, अपना महत्वपूर्ण सहयोगी और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अत्यंत प्रभावशाली देश मानता है। रोम में भारतीय दूतावास में नए कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से हो रही बातचीत से पता चलता है कि आपसी संबंध कितने गहरे और व्यापक हैं। उन्होंने कहा कि विश्व के संबंध में हमारे दृष्टिकोण एक समान हैं और वैश्विक तथा क्षेत्रीय मामलों से निपटने के हमारे प्रयासों में तालमेल के साथ आपसी रिश्तों को विकसित करने में नया उत्साह नजर आता है। प्रस्तावित भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ये यूरोप और एशिया के बीच अत्यंत प्रभावकारी होगा।
The frequent interactions we see at various levels is actually a sign of the depth and the breadth of our relationship. There is a convergence in our worldviews, a synergy in our endeavors in addressing global and regional issues, and definitely a new enthusiasm for developing our bilateral ties.
अपनी इटली यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर फ्यूजी में G7 देशों के विदेश मंत्रियों के आउटरीच सत्र में भाग लेंगे। वहां भारत को अतिथि राष्ट्र के रूप में आमंत्रित किया गया है। वे रोम में 10वीं MED मेडिटेरेनियन डायलॉग में भी भाग लेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि भारत परिवर्तनकारी बदलाव के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाने में विश्व में अग्रणी बनकर उभरा है, इसलिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI का अंतर्राष्ट्रीयकरण तेजी से आगे बढ़ रहा है। बैंक के अनुसार UPI की क्षमताओं में सुधार के साथ अक्टूबर में UPI के माध्यम से 16.6 अरब का लेन देन हुआ, जो महत्वपूर्ण है। इसमें 86% तक भुगतान की तत्काल सफल वापसी शामिल है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा ने बताया कि भारत का UPI एक ओपन एंडेड प्रणाली है, जिसमें शामिल किसी भी बैंक के एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कई बैंक खातों के उपयोग की सुविधा मिलती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव ध्रुव ज्योति सेन गुप्ता, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर विश्वेश्वरन तथा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के मुख्य महाप्रबंधक और मुख्य विक्रय विपणन अधिकारी गुलशरण राय बंसल इसमें भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के महत्व, पात्रता और अन्य तकनीकी पहलुओं के संबंध में हमारे विशेषज्ञों से रात 9:30 बजे के बाद टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा श्रोता व्हाट्सएप के माध्यम से 9289094044 पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं या #AskAIR के साथ एक्स पर अपने प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद सदस्यों से आग्रह किया है कि वे संविधान सभा की बहसों और चर्चाओं से प्रेरणा लेते हुए सदन में संसदीय मर्यादा का पालन करें। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में श्री बिरला ने आशा व्यक्त की है कि सभी सांसद सकारात्मक और रचनात्मक चर्चा की परंपरा में योगदान देंगे। उन्होंने संसद सदस्यों से संसद में मर्यादा के उच्चतम मानक स्थापित करने की अपील की।
हम इसी तरीके से उच्च कोटि की परंपराएं स्थापित करें, जहां चर्चा और संवाद हो, जहां सहमति असहमति भी हो, विचारों की अभिव्यक्ति भी हो, लेकिन हमारा आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप, हमारा आचरण संसदीय डिबेट चर्चाओं के आचरण की तरह हो।
ये संपूर्ण साक्षात्कार आज FM गोल्ड 100.1 MHz पर शाम 7:10 पर आकाशवाणी समाचार के सुर्खियों में कार्यक्रम में सुना जा सकता है। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आधा सफर पूरा होने को है। इसके 5वें दिन विभिन्न भाषाओं और विषयों की 75 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रसिद्ध हस्तियां जैसे आनंद गांधी, कृति सेनन और फिलिप नॉयस आज मास्टर क्लास और पैनल चर्चाओं में शामिल होंगे। सत्रों की शुरुआत क्या AI फिल्म मेकिंग को हमेशा के लिए बदल देगा विषय पर चर्चा से होगी, जिसमें आनंद गांधी और प्रज्ञा मिश्रा बतौर पैनलिस्ट जुड़ेंगे और इस सत्र का संचालन करेंगे फेस्टिवल डायरेक्टर शेखर कपूर। वही ऑस्ट्रेलियाई निर्देशक फिलिप नॉयस नए हॉलीवुड में सफलता कैसे पाए विषय पर मास्टर क्लास लेंगे। आज शाम बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन एम्पावरिंग द चेंज वुमेन लीडिंग वे इन सिनेमा विषय पर बात करेंगी। आज प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड की दावेदार फिल्मों की प्रदर्शनी भी जारी रहेगी। इस साल की सूची में 12 अंतर्राष्ट्रीय और 3 भारतीय फिल्में शामिल हैं, जो अपनी सिनेमेटोग्राफी और विषय के लिए चुनी गई हैं। गोल्डन पीकॉक अवार्ड में द गोट लाइफ, आर्टिकल 370 और राव साहेब भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ओमवेश उपाध्याय के साथ दुर्गेश भदौरिया, आकाशवाणी समाचार, गोवा।
K क्रिकेट में पर्थ में चल रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत के खिलाफ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक दूसरी पारी में 4 विकेट पर 20 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 515 रनों की जरूरत है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
इंडियन प्रीमियर लीग 2025 संस्करण के लिए खिलाड़ियों की नीलामी के पहले दिन कल सऊदी अरब के जद्दा में ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने रिकॉर्ड बोलियां हासिल की। लखनऊ सुपर जायंट्स ने विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बोली के साथ अपनी टीम में शामिल कर लिया है। इससे वे आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। पंजाब किंग्स ने भी श्रेयस अय्यर को 26 करोड़ 75 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया। आज दूसरे और अंतिम दिन भी मेगा नीलामी जारी रहेगी। और उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर में कल प्रो कबड्डी लीग के एक तरफा मुकाबले में पुनेरी पल्टन ने बंगाल वॉरियर्स को 51-34 से हरा दिया। इसके साथ ही पुनेरी पल्टन अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में कल कोची के जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में केरला ब्लास्टर्स ने चेन्नईयन फुटबॉल क्लब को 3-0 से हरा दिया। हैदराबाद में आज ओडिशा का सामना मेजबान हैदराबाद से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा।
मौसम विभाग ने 2 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज वर्षा की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इस सप्ताह के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान रात और सुबह के समय हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया है। शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक आज सुबह 6 बजे 278 दर्ज किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नईम अख्तर।
धन्यवाद सिद्धार्थ। महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों के नतीजों का विश्लेषण और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए चल रही सरगर्मियों को आज के सभी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता की सुर्खी है, महाराष्ट्र में महायुति के नेताओं और भाजपा संसदीय दल में मंथन जारी, मुख्यमंत्री पद पर सहमति की कोशिश। दैनिक जागरण लिखता है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम पर आज लग सकती है मुहर। COP29 में जलवायु खतरों से निपटने के लिए 250 अरब डॉलर की राशि को लेकर भारत की चिंता पर हिंदुस्तान लिखता है, भारत ने ग्लोबल साउथ के लिए सालाना 250 अरब अमरीकी डॉलर जलवायु वित्त पैकेज को खारिज किया, भारत ने इसे बहुत कम और अनुचित बताया। नई दिल्ली में चल रहे 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की खबर को कई अखबारों ने विस्तार से दिया है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, मिनी वर्ल्ड में तब्दील हुआ व्यापार मेला। देशबंधु लिखता है, व्यापार मेले में बच्चों के स्वास्थ्य परामर्श और जानकारी का केंद्र बना स्वास्थ्य मंडप। सिंगापुर में आज से शुरू हो रही विश्व शतरंज चैंपियनशिप पर हरिभूमि की सुर्खी है, विश्व चैंपियन बनने की जंग आज शुरू करेंगे ग्रैंड मास्टर गुकेश, विश्वनाथन आनंद के बाद प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बनने का होगा लक्ष्य। आज से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र की खबर को समाचार पत्रों ने विस्तार से दिया है। दैनिक ट्रिब्यून ने मंगलवार को संविधान सभा द्वारा संविधान का को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रम का उल्लेख किया है। पत्र लिखता है, संविधान दिवस पर कल सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम, एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, संसद का 26 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से, सरकार संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर नई दिल्ली के भारत मंडपम में वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, भारत इटली को यूरोप में अपना प्रमुख साझेदार, महत्वपूर्ण सहयोगी और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अत्यंत प्रभावशाली देश के रूप में देखता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा, यूपीआई का अंतर्राष्ट्रीयकरण तेजी से आगे बढ़ रहा है। और सऊदी अरब के जिद्दा में आईपीएल नीलामी के पहले दिन कल ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने रिकॉर्ड बोलियां हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।